नमस्कार भारत, आज है 17 फरवरी दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर लाल शाहबाज कलंदर दरगाह पर आत्मघाती हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 250 से ज्यादा जख्मी।
कलंदर के अंदर अहाते में या जो सहन है पूरा, यहाँ पे हजारों की तादाद में जायरीन थे, रो रहे थे, क़यामत सुग़रा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओबामा प्रशासन से मिली विरासत में है तमाम गड़बड़ियाँ, मीडिया को बताया गैर जिम्मेदार। पुलनिसामी बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, क्या होंगी उनकी चुनौतियाँ? सुनिएगा एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के उन दो युवा वैज्ञानिकों पर जो इसरो के ऐतिहासिक प्रक्षेपण अभियान का रहे हिस्सा।
उसके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा था, उसने कहा कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, मैं अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा किसी कंपनी के लिए क्यों लगाऊं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत के सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में कल एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने सहवन शहर में स्थित सूफी संत की दरगाह पर श्रद्धालुओं के बीच खुद को उड़ा दिया। हमले के वक्त दरगाह पर बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि गुरुवार का दिन जियारत के लिए पाक माना जाता है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इराक की राजधानी बगदाद में एक कार बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका पुरानी कारों के एक व्यस्त बाजार में हुआ था। बगदाद में 3 दिनों के भीतर ये तीसरा कार बम धमाका है, जिसमें शहर के बाया इलाके को निशाना बनाने वाला ये दूसरा धमाका बताया जा रहा है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बगदाद में हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने शुरुआती दिनों के कामकाज का बचाव करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को जमकर कोसा है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि प्रेस नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इसके अलावा 7 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध की जगह अब वो यात्रा प्रतिबंध पर बदलाव के साथ कार्यकारी आदेश लाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर उनकी छवि को गलत पेश करने का आरोप लगाया।
Unfortunately, much of the media in Washington, D.C., along with New York, Los Angeles,
दुर्भाग्यवश वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मीडिया लोगों के बारे में नहीं बल्कि एक खास समूह के हितों के बारे में बात करता है और उनकी बात करता है जो इस टूटी फूटी व्यवस्था से फायदा उठाते हैं। प्रेस इतना बेईमान हो चुका है कि अगर इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये अमरीकी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेस की बेईमानी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में उच्चतम अदालत ने विपक्ष के नेता लियोपोल्ड लोपेज की 14 साल कैद की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत लियोपोल्ड लोपेज की रिहाई की मांग की थी। 2014 में सरकार के खिलाफ निकाले गए मार्च में हिंसा भड़काने के आरोप में लोपेज जेल में है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। लोपेज की पत्नी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी और लोपेज के खिलाफ आदेश को गैर कानूनी करार दिया था। वहीं वेनेजुएला में सरकार का कहना है कि लोपेज की रिहाई की अपील कर ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अमरीका इसराइल और फलस्तीन के संघर्ष समाधान के लिए दो राष्ट्र सिद्धांत का पूरी तरह समर्थन करता है, लेकिन निकी हेली ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन किसी भी समाधान को मानने के लिए तैयार है। निकी हेली ने कहा कि प्रशासन और अमेरिका दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन हम शांति और स्थिरता का समर्थन भी करते हैं और अमेरिका चाहता है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आएं और चर्चा करें। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उन्हें डर है कि जो लोग वैश्वीकरण में पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं वो दुनिया से कटते जा रहे हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें फर्जी खबरों और खबरों को छानकर परोसने से लोगों को हो रहा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि लोग वही देख पाते हैं जिससे वो इत्तेफाक रखते हैं और ये एक बड़े नुकसान की बात है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, पाकिस्तान एक बार फिर चरमपंथी हमले से दहल गया है। बीती रात सिंध प्रांत के सहवन में 13वीं सदी के मशहूर सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर बाबा की दरगाह पर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। गुरुवार का दिन जियारत के लिए पवित्र माना जाता है, इसलिए दरगाह पर काफ़ी भीड़ थी। हमले में 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 250 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दरगाह के पास केवल एक अस्पताल है, जहां घायलों के इलाज के लिए अफरा तफरी मची थी। ज़्यादा जख्मी लोगों को जमशेरों और हैदराबाद ले जाया गया है।
कोई पता ही नहीं चला, एंटर होने के फौरन बाद एक भयानक सी आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कयामत का मंजर हो। जैसे ही धक्के दिए लोगों ने, मैं दीवार से टकरा के, मेरे साथ दो छोटे कजन्स भी थे, तो मैं उन्हें पुकार रहा था कि जीशान किधर गए किधर गए। जब मुझे गेट नज़र आ गया तो मेरे माइंड में ख्याल आ गया तो मुझे बाहर निकलना चाहिए। उसी टाइम मुझे कोई पता नहीं था, बेहोश हो गया।
दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अंदर अहाते में यहाँ जो सहन है पूरा, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन थे, रो रहे थे। क़यामत सुग़रा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था।
ये थे हमले के चश्मदीद। पाकिस्तान की सबसे मशहूर दरगाह पर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है और कहा है कि दरगाह में शियाओं की मौजूदगी को देखते हुए उन्होंने हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस चरमपंथी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं सिंध प्रांत के IG पुलिस AD ख्वाजा साहब ने मीडिया को बताया,
इस धमाके की भी जिम्मेदारी IS ने सोशल मीडिया पे ली है और विल इन्वेस्टिगेट। समा टीवी की वैन पे जो अटैक हुआ, जो एक मीडिया का कारकुन शहीद हुआ, और उसके बाद फिर लाहौर में इंसिडेंट हुआ, पेशावर में हुए, फाटा में हुए, क्वेटा में हुए, तो पूरे मुल्क में ये एक नई दहशतगर्दी की लहर आई है। और मैं समझता हूँ कि इन सब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वो कनेक्शन सिर्फ एंटी पाकिस्तान है।
ये थे सिंध प्रांत के IG AD ख्वाजा। और अब सीधे चलते हैं कराची BBC संवाददाता हसन काजमी के पास। हसन काजमी साहब, क्या कुछ नई जानकारी सामने आ सकी है इस हमले के बारे में?
जी, सबसे बड़ी जो इसमें अहम पेशरफ हुई है वो ये कि इस्लामिक स्टेट या IS जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा जी हमने ये किया था, जबकि ताज़ा तरीन इत्तलात जो हमारे पास है उसमें 76 अफराद हलाक हो चुके हैं और 250 से ज़्यादा जख्मी हैं, जिसमें से 40 की हालत बहुत ही ख़राब है, जिन्हें करीबी जामशोरो अस्पताल पहुँचाया गया था, नवाबशाह भेजा गया था कुछ को, और अब वहाँ से उनको कराची जो यहाँ का इस सूबे का दारुल हुकूमत है, जहाँ बड़े अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ पे लाया जा रहा है।
शाहबाज कलंदर के दरगाह की बात करें हसन साहब, इसे क्यों निशाना बनाया गया?
देखिए, पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट जो है वो काफी अरसे से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनका यही कोशिश होती है कि वो ऐसी जगहों को निशाना बनाए जो मशहूर हों, जहाँ पे लोग ज्यादा हों, नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो, चूंकि उन्हें अभी मीडिया में जिंदा रहना होता है, मीडिया में अपनी के जरिए अपनी दहशत फैलानी होती है, तो जबकि छोटा हमला होता है तो खबर इतनी बड़ी नहीं बनती, तो उन्हें खबर बड़ी बनानी होती है। और ये सबसे मशहूर दरगाह है और यहाँ पे जुमेरात को बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत, बल्कि सिर्फ इसी शहर के नहीं, जैसे 7 के बाद ही सिर्फ 1,25,000 के करीब है, आसपास इलाकों से लोग बसें भर के जुमेरात को, जो आपने कहा गुरुवार को, यहाँ आती हैं और रात भर यहाँ पे एक मेले का सा समा होता है, इसलिए इसी जगहों का निशाना बना जिसमें ज्यादा तादाद में लोग हों, यही ऐसी दहशतगर्द तंजीमों का काम होता है।
और हमले के बाद सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी, सबसे पहला जो पाकिस्तान की फौज ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है वो बिल्कुल बंद कर दिया है, इवन पहले जो लोग पैदल आ जाते थे वो भी बंद कर दिया है, तो फिलहाल वो किया। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो सिंध के दूसरे मज़ारात हैं फिलहाल उन्हें बंद कर दिया है, कराची के जो बड़े मज़ारात थे अब्दुल्ला शाह गाजी और इस तरह के दूसरे मज़ारात, उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया सिक्योरिटी खदशात की वजह से।
जी हसन काजमी साहब, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل دیر رات آنن فانن میں وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس بلا دی۔ اس پریس وارتا میں انہوں نے کہا کہ انہیں اوباما پرشاسن سے وراثت میں کئی گڑبڑیاں ملی ہیں جنہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا پر اپنی چھوی خراب کرنے کا آروپ بھی لگایا۔ سیدھے چلتے ہیں واشنگٹن بی بی سی سنواددتا برجیش اپادھیائے کے پاس۔ برجیش، کیا کیا خاص باتیں کہیں راشٹرپتی ٹرمپ نے اپنی پریس وارتا میں؟
امریش، دیکھیں، سوا گھنٹے تک چلی پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ وقت انہوں نے میڈیا کو کھری کھوٹی سنانے میں لگایا۔ خبروں کے لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ 7 مسلمان بہل دیشوں سے آنے والوں پر جو پرتیبندھ لگایا تھا انہوں نے اور جسے کورٹ نے روک دیا تھا، وہ فرمان اگلے ہفتے نئے سرے سے جاری ہوگا۔ اسے پھر سے ایسے لکھا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے ماپ دنڈ پر وہ کھرا اترے۔ انہوں نے روس کے ساتھ کسی طرح کے سمبندھ ہونے سے انکار کیا، اور امریکی میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ چناؤ ابھیان کے دوران ان کی ٹیم کے کچھ لوگ روس کے ساتھ سمپرک میں تھے، انہوں نے اسے بھی فیک نیوز قرار دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی ٹیم پوری طرح سے لئے میں کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی اپلبدھیاں گنوائی۔ جس طرح سے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، کئی بار راشٹرپتی ٹرمپ سے زیادہ وہ امیدوار ٹرمپ نظر آ رہے تھے، وہی انداز تھا جو چناوی ریلیوں میں دکھتا تھا۔ اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ مائک فلن، جنہوں نے 2 دن پہلے راشٹریہ سرکشا صلاحکار کے پد سے استعفیٰ دیا تھا، اور ٹرمپ نے رابرٹ ہاورڈ کو ان کی جگہ نیوکت کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن امریکی میڈیا اور سماچار ایجنسیوں کے انوسار رابرٹ ہاورڈ نے اس پد کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس ہفتے ایک اور یہ بڑا جھٹکا ہے ٹرمپ کے لیے۔ اور ہاں، ایک اور بات کہتا چلوں گا کہ وائٹ ہاؤس اور گپتچر ایجنسیوں کی طرف سے جو میڈیا کو خبریں لیک ہو رہی ہیں، اس پر بھی وہ خاصے ناراض تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی تہ تک جائیں گے وہ۔
برجیش، شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے۔ جن لیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی واشنگٹن ڈائری بھی اسی پر آدھارت ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ ڈائری۔
گاؤں میں کھپریل کی ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے ماسٹر جی پڑھایا کرتے تھے کہ او سے انار اور 2 دونی 4۔ جب پڑھائی سے بچنے کے لیے ہم ٹپکتی ہوئی چھت دکھاتے تھے تو کبھی گھڑکی تو کبھی کان کے نیچے ایک زوردار والا لگا کر کہتے تھے، نالائکوں، کاغذ کے نہیں بنے ہو کہ گل جاؤ گے، پڑھائی میں من لگاؤ۔ ان دنوں وائٹ ہاؤس بھی اسی کھپریل کی چھت والے اسکول کی طرح ٹپک رہا ہے۔ ٹرمپ ٹیم دوپہر کی پریس کانفرنس میں لیک کو روکنے کے لیے لیپا پوتی کر رہی ہوتی ہے، او سے انار کی جگہ او سے نارنگی اور 2 دونی 4 کی جگہ 2 دونی 5 کی دلیل تھوپ رہی ہوتی ہے۔ لیکن لیک کا عالم یہ ہے کہ شام ہوتے ہوتے سب پر پانی پھر جاتا ہے، بوند موسلا دھار میں بدل جاتی ہے، اور اس ہفتے تو بہاؤ اتنا تیز تھا کہ راجہ ٹرمپ کے سب سے دلارے درباریوں میں سے ایک کو بہا لے گئی، اور اس کے بعد جو کیچڑ پھیل رہا ہے وہ کہیں دلدل نہ بن جائے، اس کا ڈر الگ ہے۔ کہاں تو راجہ ٹرمپ واشنگٹن کے سیاسی دلدل کو ختم کرنے کے وعدے پر چناؤ جیت کر آئے تھے، اور اب خود دلدل میں پھنسے بوکھلائے ہاتھی کی طرح ٹویٹر پر چنگھاڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نامراد لیک کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ نہ تو کوئی مہاوت ہے، نہ کوئی ماسٹر جی جو کان کے نیچے لگا کر یہ کہنے کی ضرورت کر سکے، میاں لیک کو چھوڑو، کام پر دھیان لگاؤ۔ ویسے وقت وقت کی بات ہے، کل تک اسی لیک سے راجہ صاحب محبوبہ کی طرح عشق کرتے تھے۔ جب ہلری کلنٹن کے ای میلز برس رہے تھے تو اس سے ریگستان میں پڑنے والی بارش کے فہار کی طرح آنندت ہوتے تھے، بڑے پیار سے کہتے تھے آئی لو وکی لیکس۔ اب وہی محبوبہ چنو منو مینا منٹو کی بے ڈول اما بن کر ساتھ رہنے لگی ہے تو آنکھوں کو سہا نہیں رہی۔ کل تک اسے کامنی کہتے تھے، آج کلٹا کہہ رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میڈیا والوں کے ساتھ اس کی تاک جھانک بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کہاں تو اربوں ڈالر کی دیوار بنا کر اس پر اپنا نام لکھوا کر پورے میکسیکو کو روکنے کی تیاری کر رہے تھے ٹرمپ صاحب، اور یہاں اپنے ہی گھر کی دیوار کی سوراخوں سے کانا پھوسی چل رہی ہے۔ غصہ میڈیا والوں پر بھی اتر رہا ہے، کبھی بے ایمان تو کبھی فیک نیوز کہہ کر انہیں لتاڑتے ہیں، لیکن یہ ٹی وی اخبار والے تو اس نوکری میں گھستے ہی ہیں موٹی چمڑی لے کر۔ کسی دیش میں انہیں پرسٹیچیوٹ کہا جاتا ہے تو کہیں را کا ایجنٹ، ایسے ناموں کی تو انہیں عادت پڑ چکی ہے۔ ویسے کہاں پھنس گئے راجہ صاحب، کریں تو کیا کریں، یہ واشنگٹن ہے ہی گندی اور بدنام جگہ۔ چناوی ریلیاں کتنی اچھی ہوتی تھیں، ایک جملہ کہتے تھے لوگ، ٹرمپ 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 کے نعرے لگاتے تھے۔ یہاں ایک جملہ کہتے ہیں، اس پر 4 سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بہت ہو گیا، ارے پلین نکالو رے، راجہ صاحب فلوریڈا جائیں گے، اس شنیوار وہاں ایک ریلی کریں گے، لال ٹوپی پہنے ہوئے سچے لوگوں سے ملیں گے جو ان کی ہر بات کو سچی مانیں گے، اور وہیں پر تھوڑی دیر امریکہ کو پھر سے مہان بنائیں گے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، واشنگٹن۔
और अब भारत का रुख करते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में ईके पलनीसामी ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ओ पनीर सेल्वम के विद्रोह और शशिकला के जेल जाने के बाद उन्हें कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन 15 दिनों के भीतर ही उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करना है। पलनीसामी के लिए इस कुर्सी का सफर कितना लंबा होगा और अब उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, इन प्रश्नों को लेकर हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात की वरिष्ठ पत्रकार टी आर रामचंद्रन से।
वो बहुमत तो बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे, उसके बाद उनकी दिक्कतें शुरू होंगी। दूसरी तरफ जिन्होंने रिवोल्ट किया, जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं पनीर सेल्वम, उन्होंने जो सोचा कि जिन लोगों को चेन्नई शहर से बाहर एक एक गेस्ट हाउस में रखा हुआ है, उनमें से लोग रिवोल्ट करके अपनी तरफ आएंगे, वो बात हुई नहीं है। और अब पलनीसामी साहब का मुख्यमंत्री बनना तो होगा ही होगा, पर जो तकलीफें उनको होगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस पे गौर करना पड़ेगा, ये सरकार कितने दिन चलेगी।
क्या दिक्कत हो सकती है जब एक बार अगर उनको बहुमत मिल जाती है तो उनके लिए क्या चुनौतियां सामने आएंगी?
देखिए, सबसे पहले तो आप एक कठपुतली बनके सरकार चलाओगे। कठपुतली इसलिए है कि शशिकला जो कन्विक्ट होके अब जेल में है बेंगलुरु में, वो चाहती है कि वो उनके पति और बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं जिनको मन्नारगुड़ी माफिया के नाम से जाना जाता है, वो स्ट्रिंग्स पुल करेंगी कहीं पर भी हो, क्योंकि उनकी जो सुप्रीमेसी है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द AIADM का, वो अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने एक नेव्यू दिनाकरन को पार्टी में शामिल कर लिया एज डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, और बड़ा पावरफुल अहदा है ये, हम माने या ना माने, और उनको ये दिनाकरन साहब को अपने कैबिनेट में शामिल करना पड़ेगा। मतलब ये है कि सरकार शुरू होने से पहले ही अगर आप जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी की, तो आपने एक स्पाई तो बिठाई दिया कि ये बंदा कैसे फंक्शन करेगा।
ओ पनीर सेल्वम के लिए अब क्या रास्ता बच रहा है? क्या ये जो सांसद उनके पक्ष में आए और ऐसा लग रहा था कि अब एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक दौर चल निकलेगा विधायकों का उनकी तरफ आने का, वो क्यों रुक रहा है या क्या वो किसी गलत फहमी में थे?
नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत फहमी में थे। वो सोच रहे थे कि वो सबसे प्रथम लॉयलिस्ट थे जयललिता का, जब उनका देहांत हुआ ऑटोमेटिकली वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन गए, पिछले दो इंस्टेंसेस को नजर रखते हुए। अब वो जमाना नहीं रहा कि पनीर सेल्वम सोचें कि क्योंकि वो सबसे लॉयल सर्वेंट थे जयललिता का, तो पूरा MLAs उनकी तरफ आ जाएगा। हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जयललिता का इलेक्शन पिछले मई में हुआ था, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। ये टर्म लेजिस्लेटर का MLA का 5 साल का है, जिन लोगों ने एक साल भी नहीं खत्म की, कुछ महीने अभी बाकी हैं। अगर उनसे आप कहें कि एक मिड टर्म इलेक्शन पे आप फिर से जाइए, कोई गारंटी नहीं है कि उनको टिकट मिलेगी। दूसरी बात, कोई गारंटी ये भी नहीं है कि AIADM के जीत के आएगी, क्योंकि जो करिश्माटिक लीडर जयललिता थी, वो तो इनमें कोई शशिकला में कोई करिश्मा तो है नहीं। और सबसे अहम बात हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जिसने कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को खारिज करके उन्हें वापस जेल भेज दिया, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है उनपे और उनको बड़ी मुश्किल इनसे पैदा हुई।
एक आखिरी सवाल की अगले 15 दिनों के भीतर क्या कोई और भी नाटकीय घटनाक्रम हो सकता है?
देखिए, नाटक जितना करना था सब हो गया। MLAs जो पनीर सेल्वम के तरफ आ सकते थे उन सबको कमिट करवा दिया, वो लोग भी कोई रिजाइन नहीं करना चाहता या फ्लोर नहीं बदलना चाहता, क्योंकि 5 साल का जो टर्म है वो अभी खत्म हो जाएगी। तो इसमें मुश्किलें बहुत हैं, मैं कुछ भी नहीं रूल आउट कर सकता इस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा।
ये थे TR रामचंद्रन, कह रहे थे कि पलनीसामी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 69 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार आज थम जाएगा। कानपुर, लखनऊ, सीतापुर जैसे 12 जिलों में फैली इन सीटों के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा। इन चुनावों में नोटबंदी एक अहम मुद्दा है। बीजेपी जहां इसके फायदे गिना रही है, तो विपक्षी पार्टियां इसे अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने वाला बता रही हैं। लेकिन देवरिया जिले में एक गांव की महिलाओं को लगता है कि नोटबंदी ने उनका सशक्तिकरण किया है, उन्हें मजबूत बनाया है। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
देवरिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर सरौली गाँव के प्रमुख चौराहे पर किराए की 3 दुकानें हैं। इन दुकानों के बाहर शटर नहीं, ईंटें खड़ी की गई हैं और उस पर कपड़े की चादर है जिससे दुकान के भीतर काम करने वालों की शक्लें ना दिखें। दुकान के भीतर करीब 12 महिलाएं रंग बिरंगे धागों से मैक्रेमे या आभूषण बनाने में जुटी हुई हैं। किसी के बगल में उसका बच्चा खेल रहा है और किसी के बगल में उसकी सास झपकी ले रही है। इन सभी महिलाओं को नोटबंदी का अफसोस कम और खुशी ज्यादा है। दरअसल ये सभी दिहाड़ी पर ये काम या तो अपने घर से करती हैं और या इस केंद्र पर आकर। देवरिया डिजाइन नामक इस पहल को शुरू करने वाली 26 वर्षीय पूजा शाही है।
शुरुआत में सबसे बड़ी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। यहाँ से निकल के चौराहे पर दुकान लेने का बात हुआ तो ये लोग बोल दिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पापा को लोग बोलते थे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में इस तरह की कढ़ाई का काम काफी महिलाओं को आता है, लेकिन आम तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलता है। जैनब इसी गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती हैं और कुछ वर्षों से इस काम में जुड़ चुकी हैं। जैनब ने बताया,
हम लोग पहले घर से निकलते नहीं थे, पर काम करने के लिए जब नोटबंदी करती हुआ था निकलने लगे थे।
देवरिया के इस गाँव की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे धागों के आभूषण भारत ही नहीं विदेशों में भी बिक रहे हैं। शुरुआत में इन महिलाओं की मदद के लिए कुछ गैर सरकारी संगठन आगे आए थे, लेकिन कभी भी सरकारी मदद न मिलने की मायूसी है। खुशबू भी यहाँ काम करने आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। खुशबू ने बताया,
नहीं, हम काम करेंगे, हम वोट देने नहीं जाएंगे, हम अपना काम करेंगे, क्योंकि उससे कुछ फायदा हम लोग का ही नहीं है, इससे काम से फायदा है।
कुछ इसी तरह की दास्ता यहाँ पर हर महिला की है। किसी ने घर वालों से छुपते छुपाते काम शुरू किया था और किसी ने ये कहकर कि किसी पड़ोसी का सहयोग भर दे रही हैं बस। गांव के एक युवा यशवंत शाही भी इनके प्रयासों की सराहना करते नहीं थकते।
जहां तक शुरू में हुआ 10-12 साल पहले भी थोड़ा बहुत विरोध विरोध हुआ, लेकिन अब कोई विरोध नहीं है।
लेकिन इन महिलाओं ने ये जरूर ठान रखा है कि आगे चलकर कमाती जरूर रहेंगी। अब न सिर्फ इन्हें इनके हुनर के पैसे मिलते हैं, बल्कि घर वालों और समाज से प्रशंसा भी उससे ज्यादा मिल रही है। नितिन श्रीवास्तव, BBC देवरिया।
और अब वक्त दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की प्रमुख खबरें जान लेने का। हरिता, मैं देख रहा हूं आप काफी देर से अलग अलग अखबारों को उलट पुलट रही हैं, क्या कुछ निकाल कर लाई हैं आप इन अखबारों से?
जी, अभी जैसे चुनाव का मौसम चल रहा है तो द एशियन एज के कार्टून पर मेरी नज़र सबसे पहले गई है। इसमें नेताजी जो हैं वो पूरी सभा से वादा कर रहे हैं कि हर गांव को अपना एक अलग सैटेलाइट दूंगा ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो जो हाल ही में जो इसरो ने जो है 104 सैटेलाइट छोड़े हैं, उसी का असर मुझे लग रहा है ये है। जनसत्ता का एक कार्टून है, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हाथ जोड़कर विधायकों से कह रहे हैं कि धन्यवाद, और अब आप फिर से उसी रिजॉर्ट में चलिए जहाँ आप कुछ दिनों से रह रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है फ्लोर टेस्ट देना है और अपना बहुमत साबित करना है। द पायनियर ने एक बड़ी दिलचस्प खबर छापी है कि बिहार में शराबबंदी का जो असर है वो सरकारी बाबुओं पर कुछ ज़्यादा ही कड़ाई से लागू होगा। वो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी हो, वो शराब पीकर जिसे कहते हैं कि टल्ली नहीं हो सकते, अगर पाए गए वो कि उन्होंने शराब पी है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नवभारत टाइम्स ने एक खबर लिखी है कि 3 तलाक का मसला संविधान बेंच के हवाले कर दिया गया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच जो होती है वो अब इस मामले को देखेगी। एक और खबर है, सारे ही अखबारों में छाई है और इस पर हिंदुस्तान ने लिखा है कि 9 लाख बैंक खाते जो हैं शक के घेरे में हैं, नोटबंदी के बाद जो है इन पर नज़र रखी जा रही थी और 5 लाख से ज़्यादा इसमें जो है रुपए जमा किए गए हैं, इसलिए ये शक के घेरे में है। नोटबंदी से ही जुड़ी हिंदुस्तान ने एक और खबर दी है कि दिल्ली और उस आसपास के क्षेत्रों में 100 में से 70 ATM अभी भी खाली हैं और लोगों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रूण लिंग जाँच संबंधी सभी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे अन्य कंपनियों को कहा है और उन्हें कहा है कि हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, लड़कियों की संख्या घट रही है और ये कंपनियां जो है अपने मुनाफे कमाने में लगी हुई हैं। ये खबर छपी है। जनसत्ता ने एक खबर छापी कि दिल्ली बम धमाकों के मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया गया है। इसमें अभियुक्त तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा दी गई, लेकिन वो जेल नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले ही जेल में रह चुके हैं। इसी पर मेल टुडे ने लिखा है कि जो छूटे हैं उन लोगों ने कहा कि असली गुनहगार तो बाहर हैं जबकि हमारे 11 साल जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। इसी के अलावा जनसत्ता ने खबर दी है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे विकास स्वरूप अब कनाडा के राजदूत बनने जा रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए हरिता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च कर एक नया इतिहास रचा है। इतना बड़ा कारनामा आज तक कोई देश नहीं कर सका, लेकिन ये कारनामा किसी एक व्यक्ति की वजह से संभव नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक शामिल थे। उन्हीं में से दो युवा ऐसे थे जिनके लिए इस मुकाम तक पहुँच पाना किसी सपने से कम नहीं था। ये युवा वैज्ञानिक हैं अमन वहीद खान और विकास अग्रवाल। दोनों ही छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न रहीं। एक किराने की दुकान चलाया करते थे तो दूसरे जो शख्स हैं वो अपने पिता की हत्या के सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए सलमान रावी की एक खास रिपोर्ट।
वर्ष 2009, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में माओवादी छापामारों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सब इंस्पेक्टर वहीद खान का शव उस लाइन में रखा था जहां उनके दूसरे साथियों का था। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी हीना यास्मीन खान अपने और अपने दो बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान थीं। मगर आज लगभग 8 सालों के बाद उनका सर फख्र से ऊंचा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी जश्न का माहौल है। बात हो रही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के उन दो युवा वैज्ञानिकों की जो भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने के प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। इन युवा वैज्ञानिकों में से एक हैं अमन वहीद खान और दूसरे हैं विकास अग्रवाल। अमन की माँ हीना यास्मीन कहती हैं,
जब ये शहीद हुए थे तब लोग मुझसे सबसे पहले ये पूछते थे कि तुम्हारे लिए उन्होंने क्या छोड़ा है, कुछ पैसे हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। बुरा लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन कल जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने सम्मान देखा, मेरी आंख भर आई और मुझे लगा कि इतनी कीमती चीज अमन और यासर उन्होंने मेरे लिए छोड़ के गई। डिस्प्यूट चल रहा था उनका एसपी साहब से, उनको चुभ गई थी बहुत, तो वो चाहते थे कि मैं तो जितना करना था मैं कर चुका, लेकिन मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे बच्चे ऐसा क्या करे कि एसपी जो है अपने टेबल से खड़े होकर उनसे हाथ मिलाए। तो किसी ने कहा कि आईटी के अगर आईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे या मेडिकल में अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो श्योर है कि एसपी साहब आपके बच्चों से खड़े होकर हाथ मिलाएंगे। तो बस वो उसी बात को था कि बस तुमको जाना है, बच्चों को आईटी करवाना है।
हिना यास्मीन का कहना है कि आईआईटी से निकलने के बाद अमन को कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर भी मिले,
लेकिन उसके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा था। उसने कहा कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, मैं अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा किसी कंपनी के लिए क्यों लगाऊं।
अमन और उनके भाई यासीर दोनों ने आईआईटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। यासीर ने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली है। वहीं विकास की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि वो एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए जहां व्यवसाय को ही सबसे बड़ा माना जाता रहा है। उनके घर में ही उनकी पढ़ाई का विरोध होता रहा, यही कारण है कि उन्हें अपने पिता की किराने की दुकान को संभालना भी पड़ा। कोरबा के स्थानीय स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्थानीय कॉलेज से बीएससी की। बीबीसी से बात करते हुए विकास ने कहा,
घर पे वैसा नहीं था हमारे यहाँ माहौल पढ़ाई लिखाई वाला, पर मैं दुकान पे ही बैठने लग गया था क्योंकि फादर की तबीयत भी वैसी रहती, उनको एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका।
विकास अग्रवाल ने किराने की दुकान संभालते हुए सपने देखने शुरू कर दिए।
साल होने के बाद फिर वहाँ कॉलेज खुल गया कोरबा में 2009 में, तो मेरी जब बीएससी खत्म हुई 2010 में, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वहाँ से कोरबा से ही इंजीनियरिंग कर लूँ, क्योंकि अब तो कोरबा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें भी मेरी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट रहती है, तो वहाँ क्योंकि मैं दुकान पे ही रहता था, पर फिर भी जैसे तैसे मैंने दुकान पे रहके वहाँ भी टॉप किया।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद विकास ने इसरो की परीक्षा दी और उनका चयन भी हो गया। विकास अग्रवाल आईआईटी तो नहीं जा पाए, मगर उन्होंने अपना सपना अपने कस्बे में ही रहकर और अपनी किराने की दुकान चलाते चलाते पूरा कर लिया। आज इसरो की उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ अपने दोनों युवाओं पर नाज कर रहा है। सलमान रावी, बीबीसी।
खेलों की दुनिया में आज कुछ बहुत खास नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 23 फरवरी से पुणे में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले मुंबई में आज से एक अभ्यास मैच शुरू हो रहा है। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत के सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर कल एक आत्मघाती बम धमाका हुआ। इसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एक कार बम धमाके में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने शुरुआती दिनों के कामकाज का बचाव करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर जमकर बरसे। ट्रंप ने कहा कि प्रेस नियंत्रण से बाहर हो चुका है। वेनेजुएला में उच्चतम न्यायालय ने विपक्ष के नेता लियोपोल्ड लोपेज की 14 साल कैद की सजा को बरकरार रखा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम मल्टीमीडिया खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।